आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी, मेरे बाबा मुझको दी खुशियां बेपनाह, मेरे बाबा मुझको दी खुशियां बेपनाह, आपकी इनायतें हैं आपकी निशानी, आपने संवार दी मेरी जिंदगी।
ओम शांति। दिव्य बुद्धि दाता, भाग्य विधाता, ज्ञान सागर शिव बाबा के अति प्रिय सब बच्चे, भाई एवं बहने, बाप दादा के फुलवाड़ी के बहुत विशेष सब सुंदर सुंदर फूल, बाबा के सब अनन्य रतन, ब्रह्मामुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, शिव बाबा के रुद्र ज्ञान यज्ञ के रक्षक ब्राह्मण कुलभूषण, बाबा के बच्चों को बाबा के घर में आने की बहुत बहुत बधाइयां। केवल बाबा के घर में आना ही नहीं है, लेकिन इस सीजन का फर्स्ट टर्न, उस फर्स्ट टर्न में हम आत्माओं को ये विशेष सेवा का चांस, मिलने का चांस, तपस्या का चांस, आगे बढ़ने का चांस, उड़ने का चांस मिला है, इसलिए आप सब विशेष बाबा के बच्चों को विशेष विशेष बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। समय बड़ा विशेष है, दुनिया के हिसाब से श्राद्धों के दिन समाप्त हो रहे हैं, और कौन से दिन शुरू होंगे? नवरात्रि शुरू होंगे। श्राद्ध माना कई बार सोचते हैं जो मर गए, जो चले गए, हाँ, उनके लिए ब्राह्मणों को बस थोड़ा बहुत खिला पिला देते हैं। हम बाबा के बनने के बाद भी बहुत से भाई बहन कहते हैं, बहन जी घरों में तो ये सब करना ही पड़ता है ना, तो कभी कभी मैं हंसी में पूछती हूं, क्या हम अपने गए हुए बड़े बुजुर्गों का ही श्राद्ध मनाते हैं, या हम भी किसी का श्राद्ध खाते हैं? हम भी तो कईयों को छोड़ के आए होंगे ना, पिछले जन्म में छोड़ के आए हो, छोड़ के आए हैं, तो उस दुनिया में कहते हैं हमारे पितर हैं, लेकिन बाबा हमें क्या कहता है, तुम कौन हो, कौन हो? इष्ट देव और देवियां हो। दुनिया में पितरों के हिसाब से लोग बहुत डरते हैं, हमारे पितर नाराज ना हो जाएं। बाबा ने 84 जन्मों का ज्ञान देकर, 4 युगों का स्पष्ट ज्ञान देकर, हम बच्चों की बुद्धि को बहुत स्पष्ट साफ कर दिया है। लौकिक रीति में भी देखो पहले श्राद्ध हैं, माना हमारे मन में श्रद्धा पैदा हो और बाबा कहते बच्चे आप कौन हैं, आप बाबा के केवल सेवाधारी बच्चे नहीं हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व सेवाधारी बच्चे हैं। कितना ऊंचा टाइटल बाबा देते हैं और पूरे विश्व की सेवा की जिम्मेवारी बाबा ने अपने विशेष बच्चों को दी है। ऐसे हम और आप सब महान आत्माएं हैं, ऐसे बाबा के बच्चे महान आत्माओं को बाबा के घर में आने की पुनः बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। आज का हमारा विषय ही ऐसा है, आप केवल ताली ना बजाना। आप सोचेंगे शायद बहन जी हमें बधाइयां मुबारक ताली बजाने के लिए दे रही हैं, नहीं, लेकिन मैंने इतनी बधाइयां इतनी मुबारकें अपने अंदर जमा की। आज सवेरे बाबा का वरदान था कि बच्चे अच्छा अच्छा भी कहते जाओ, एक दूसरे को बधाई दो, यही वृद्धि को पाने की विधि है। बाबा ने हमें जो ज्ञान सिखाया है ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है, इतना ऊंचा इतना श्रेष्ठ बाबा ने ज्ञान सुनाया है। और सुनाने के बाद बाबा पूछते हैं बच्चे समझा, समझा, और समझा पूछने के बाद बाबा कहते हैं बच्चे अब क्या करेंगे, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करना। और दो बातें तो हम याद रखते हैं, अपने को आत्मा समझना, बाबा को याद करना, लेकिन एक तीसरी बात भी है जिसे हम या तो कहेंगे भूल जाते हैं और या कहें अभी शायद उसको हमने किनारे रखा हुआ है। जैसे लौकिक रीति में स्कूल में पढ़ते हैं कोई सब्जेक्ट बच्चों को मुश्किल लगता है, कहते हैं इनको बाद में तैयार करेंगे, पहले जो आसान है इसको तैयार कर ले। तो तीसरी बात बाबा कौन सी कहते हैं, कौन सी कहते हैं, याद आ रही है, अपने को आत्मा समझ, क्या करो बाबा को याद करो, और तीसरी बात दैवी गुण धारण करो। ये जो दैवी गुण धारण करने वाली बात है इसको हमने क्या कर दिया है, गठड़ी बांध के थोड़ा सा सबने हमने किनारे रखा हुआ है, करेंगे करेंगे, और बहुत अच्छा एक्सक्यूज है, अरे बड़े बड़ों को भी देखा है। अब कब तक हम ऐसा ही बहानाबाजी करते रहेंगे, आखिर तो परीक्षा का समय नजदीक आ रहा है। जो भी हम आज बाबा के बच्चे बैठे हैं आप सब क्या महसूस करते हैं, आप दुनिया में रहते हैं, बाहर रहते हैं, वातावरण को देखते हैं, समाज को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, क्या ऐसा हमें महसूस होता है कि सचमुच अब ये समय बदलने वाला है, होता है, किस किस को महसूस होता है कि ये समय अब सचमुच बदलने वाला है, कम को महसूस होता है। तो ये महसूस करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम यही कह के छोड़ रहे हैं दुनिया तो बदलती रहती है, जमाना तो हमारे देखते देखते देखिए जी कितना बदल गया है, जब हम बच्चे होते थे तो कैसे होते थे, आजकल के बच्चे कैसे हैं, तो जमाना तो बदलता ही है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आज का जमाना, जिस तरीके से और जितनी स्पीड से बदल रहा है, या यूं कहें पिछले 10-15 वर्षों में समय जिस रफ्तार से बदला है शायद पहले कभी नहीं बदला है। और अगर हमें ये महसूस नहीं होता तो हमें ये महसूस करना सबसे पहले जरूरी है। आप कहेंगे क्यों? आज सवेरे भी हमने बाबा की मुरली में सुना बाप समान बनना है। तो बहुत बार हम सोचते हैं, पूछते हैं, बाप समान, ब्रह्मा बाबा समान कैसे बने? ब्रह्मा बाबा ने क्या अनुभव किया? ब्रह्मा बाबा कैसे बने? तो पहला बाबा का अनुभव याद कीजिए। आपने बहुत बार सुना होगा, बाबा की जीवन कहानी में पढ़ा होगा, बाबा को पहले बनारस में शाम के समय भक्ति करते हुए जो साक्षात्कार हुआ कि अब ये दुनिया क्या होने वाली है, विनाश होने वाली है, चारों तरफ देखो क्या है, मार काट है, चारों तरफ क्या है, आग बरस रही है। तो बाबा ने वो भयानक दृश्य देखा और बाबा को हुआ ये क्या हो रहा है। और उसके बाद बाबा ने जो दूसरा साक्षात्कार किया वो ये था कि अब ऐसी नई स्वर्ग की दुनिया तुम्हें लानी है। सबने ये सुना है, ये सुना है या पढ़ा है? प्लीज हाथ उठाइए। सुना या पढ़ा है ब्रह्मा बाबा को ये साक्षात्कार हुए? इस साइड में जिनको न मालूम हो तो बाबा की जीवन कहानी लिटरेचर काउंटर से खरीद के एक बार जरूर पढ़िए। दो हिस्सों में है, आप केवल पहला भाग पढ़ लीजिए तो मालूम पड़ेगा सचमुच ब्रह्मा बाबा का पहला कदम क्या था। बाबा को यही अनुभूति हुई अब ये समय बदलने वाला है। उस समय शिव बाबा की पहचान चाहे नहीं थी, लेकिन हां कोई अनुभव करा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई समझा रहा है। और जैसे ही बाबा को ये अनुभव हुआ कि ये समय बदलने वाला है, बाबा ने एक सेकंड भी नहीं लगाया और बाबा ने बनारस से ही भागीदार को भी लिख भेजा और लौकिक परिवार में भी कह दिया, पाना था सो पा लिया। हम बाबा के बच्चे ये गीत गा लेते हैं, पाना था सो पा लिया। क्या पाना था? क्या कभी हमने अपने से पूछा है क्या पाना था? या केवल गीत गा देते हैं? बाबा ने कहा है ना, पाना था सो पा लिया, हमने भी पाना था सो पा लिया, क्या पा लिया। बाबा ने तो बहुत कुछ पाया। उसका फाउंडेशन ये है, निश्चय ये है, अब समय बदल रहा है नहीं, ये समय बदलने वाला ही है और तीव्र गति से बदलने वाला है। इसलिए मुझ आत्मा को तीव्र गति से अपना पुरुषार्थ करना है, तब हम पद्मों की कमाई अपने जीवन में कर सकते हैं। अब अगर हम पूछेंगे कौन पद्म भाग्यशाली बनना चाहते हैं, पद्म तो मालूम है ना सबको, पद्म किसको कहते हैं? पद्म तो मालूम है ना, पद्म तो मालूम है ना। अगर आप गिनती में देखो कितनी जीरो उसके आगे आएंगी। पद्म भाग्यशाली बाबा हमें बनाना चाहते हैं। जब मुझे ये निश्चय है ये समय निश्चित रूप से बदलने वाला है और बदलने वाला वो रचयिता, वो सर्वशक्तिवान स्वयं मेरा पथ प्रदर्शक है, स्वयं मेरा गाइड है, स्वयं मेरा रहबर है, स्वयं मेरा मात पिता है, स्वयं मेरा सत्य शिक्षक सतगुरु है, आप सोचिए कितना नशा चढ़ेगा। तो ब्रह्मा बाबा को पहला अनुभव साक्षात्कार में समय बदलने वाला है। दूसरा अनुभव बाबा का, बच्चे तुम ये बनने वाले हो, विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ और बाबा को नशा चढ़ गया कि बस मुझे तो अब ये बनना है। हम सब नशे की बात तो कहते हैं लेकिन अंदर से हमें नशा कितना है। यूं हम किसी से अगर थोड़ा सा परिचय लेंगे कि भाई जी बहन जी आप कहां से आए हैं, आप क्या करते हैं, तो हम बहुत नशे से सुनाते हैं मैं प्रोफेसर हूं, मैं वकील हूं, डॉक्टर हूं, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं। वो जो नशा होता है उस समय उस व्यक्ति का, वो आप स्वयं भी अभी अनुभव कर सकते हैं। आप सब ऐसे अलग अलग प्रोफेशन से हैं, चाहे किसी की छोटी सी दुकान भी होगी लेकिन उसको भी नशा है कि मेरा अपना बिजनेस है, मेरी अपनी दुकान है। बहुत नशे से बताएगा मेरी फलानी जगह फलानी चीज की दुकान है। और फिर अगर उसका बच्चा कहीं अच्छे कॉलेज में उसको एडमिशन मिल गया है, वो इंजीनियर बन रहा है, वो डॉक्टर बन रहा है, कहेंगे बहन जी मेरा एक बेटा है इंजीनियरिंग कर रहा है, बस फाइनल ईयर है, सीए कर रहा है, बस लास्ट सेमेस्टर है। कितना नशा होता है, जबकि विनाशी दुनिया की कोई भी प्राप्ति अविनाशी नहीं है। इंजीनियर बनने के बाद उसको जॉब मिलेगा या नहीं, सीए बनने के बाद वो क्या करेगा क्या नहीं, अनफॉर्चुनेटली होता भी है, पास करने के बाद हार्ट अटैक हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो पढ़ाई वहीं रह गई। लेकिन इस समय आप देखिए कितना नशा है, मैं फलाना, मेरा बेटा फलाना, और किसी के फादर फोर फादर्स, वो भी कुछ होंगे तो उनको और भी नशा है। मेरे फादर भी ऑफिसर थे, जज थे, डॉक्टर थे, सोशल वर्कर थे, क्या नशा होता है, क्या बातें सुनाते हैं। अब हम जरा अपने मन में पूछें, भाग्य विधाता की मैं संतान, शिव बाबा कौन है? भाग्य विधाता है, केवल शिव बाबा ही नहीं, ब्रह्मा बाबा भी कौन है? कहते हैं ना, ब्रह्मा की कलम से लिखा गया, उसकी लेखनी से लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता है, तो वो भी भाग्य विधाता, वो भी भाग्य विधाता। हमारा पारलौकिक अलौकिक बाप दोनों भाग्य विधाता हैं। क्या मुझे इतना नशा है? है। क्या मैंने कभी इतने नशे के साथ किसी को ये बताया है, किसी से ये चर्चा की है? चलो हम लोगों से नहीं कर सकते, कहेंगे बहन जी लोग तो ज्ञान सुनते नहीं, मानते भी नहीं, वो कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां क्या है, ये बहुत से लोग अगेंस्ट हैं। हालांकि अब तो वातावरण बहुत बदल गया है। क्या अपने इस ब्राह्मण परिवार में भी आज हम मधुबन में आए हुए हैं, क्या हम अब कभी एक दूसरे से मिलकर ये चर्चा करते हैं? मैं आत्मा कितनी भाग्यवान हूं, मुझे बाबा ने क्या बना दिया? सच सच पूछो अपने आप से, हम ये चर्चा आपस में करते हैं? या हम अलग अलग शहरों से आए हैं, अलग अलग स्थानों से आए हैं और केवल मिलकर खुश हैं, अरे आप भी आए, अरे आप भी आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, अच्छा आप कैसे हैं, आपके बच्चे, आपके बहू बेटे, आपका बिजनेस, कई तो केवल यही परिचय एक दूसरे का करके और इस लौकिकता के आधार से अपनी फ्रेंडशिप को केवल बढ़ा के जाते हैं, बना के जाते हैं। मुझे नशा कौन सा है? आप ब्रह्मा बाबा को देखिए, हमने साकार में बाबा को देखा। बाबा का ये कोई फोटो पोज नहीं है। आप सोचेंगे कि कोई फोटो खींची होगी बाबा की, बाबा एकदम ऐसा बैठा है। बाबा हमेशा ही ऐसा सीधा और एकदम ऐसा नशा। बाबा का चेहरा देखो, क्योंकि बाबा के अंदर की जो चेतना थी, कॉन्शियसनेस थी, वो बदली हुई थी और बाबा को ये नशा प्रैक्टिकल में था। बच्चे मैं कल जाकर ये बनने वाला हूं। अगर हम स्वयं से पूछें क्या मुझे ये नशा है, कई बार हम पूछते हैं आप क्यों योग लगाते हो, क्यों बाबा को याद करते हैं। जो बहुत नए नए 2, 4, 5 साल के भाई बहने होंगे वो तो यही कहते हैं, बहन जी बस मेडिटेशन सिखा दीजिए। मेडिटेशन से रिलैक्स हो जाते हैं, शांति मिलती है। हमारी मेडिटेशन केवल रिलैक्सेशन और शांति की नहीं है, हमारी मेडिटेशन तो वो मेडिटेशन है जो हमें दुखों से, बुराइयों से, व्यसनों से, पुरानी बातों से मुक्त कर देती है। दोनों में अंतर है। रिलैक्सेशन मींस मैं आज सवेरे से बहुत बिजी थी और अब मैं बहुत थकी हुई हूं, चलो 5 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट मेडिटेशन किया, यस नाउ आई एम रिलैक्स्ड। ये फीलिंग अलग चीज है, लेकिन बाबा साकार में थे। बाबा कहते थे मुझे कैसे बच्चे चाहिए, अथक, अचल, अडोल। आज भी देखिए, हम लोग जिस उम्र में हैं, हमारी दादियां हैं, भले शारीरिक आप कहेंगे फिजिकली तो कष्ट जरूर है, लेकिन उनका चलना, उनका बोलना, उनका मिलना, उनका चेहरा, साकार में बाबा को नहीं देखा लेकिन बाबा के बच्चों को तो देख रहे हैं। दादी जानकी, दादी रतन मोहिनी, दादी गुलजार, उनकी उम्र और उनका नशा, कोई भी बात है, बाबा है, बाबा है। ऐसे दिल से हमारे बाबा कितना निकलता है, एक है मंत्र की तरह, बाबा 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 बाबा, ये मंत्र है, और एक दिल से बाबा हमारे साथ है। हम लोग यज्ञ सेवा में आए, बड़ी दीदी थी हमारी मनमोहिनी दीदी जी, कई बार कोई बात होती थी दीदी कहती थी बाबा बैठा है, बाबा बैठा है। हम लोग छोटे थे आयु के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से, अंदर अंदर सोचा करते थे ये बाबा बैठा है क्या चीज है, बाबा बैठा है, बाबा तो अव्यक्त हो चुके, बाबा बैठा है। अब महसूस करते हैं हमारी दीदी दादियों का वो नशा और निश्चय, केवल निश्चय नहीं, जिसको निश्चय होगा उसका नशा, उसकी फीलिंग्स बहुत गहरी होंगी। हम कौन सी फीलिंग्स में रहते हैं? अगर अभी भी हम में से किसी से कोई पूछेगा ना, अच्छा आप बताइए, आप इतने बड़े बिजनेसमैन बने, आप इंजीनियर बने, आप डॉक्टर बने, अच्छा आप कोई साधारण सोशल वर्कर भी हैं, चाहे आप कैसे बने, तो हमारे मुख से जो अनुभव निकलेगा अधिकतर ऐसा निकलता है, बहन जी क्या बताएं, बचपन में तो हमारा बहुत साधारण था, हमने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, जिन अपने भाई बहनों को मैंने बड़ा किया, वही आज मेरे अगेंस्ट हैं। जिन बच्चों को मैंने इतने अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया, अब वो सुनते ही नहीं हैं, या सब बाहर जाकर के अपना अपना सेट हो गए हैं। कौन सी फीलिंग्स हैं बताइए, अगर मैं आपको अपना ऐसा अनुभव सुनाऊं, कौन सी फीलिंग्स आपको महसूस हो रही हैं? आप कहेंगे बहन जी पहुंची तो किसी बहुत बड़े पोजीशन पर हैं, ओहदे पर हैं, लेकिन बड़ी मेहनत की है, अंदर में दुख बहुत है। अब हम बाबा के बच्चे हैं, हो सकता है किसी का बैकग्राउंड ऐसा भी है, पहले गरीब थे, मेहनत करके अब बहुत शाहूकार बन गए। वो मेहनत अभी तक अंदर में समाई हुई है, थकान महसूस हो रही है, लेकिन 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से हमें जो बाबा का ज्ञान मिला है, उस ज्ञान का नशा वो कितना चढ़ा है। अगर किसी को बुखार हो, एक दिन दो दिन ना उतरे, तीसरे दिन डॉक्टर को कहता है कि भाई मेरा बुखार उतर नहीं रहा है, क्या बात है, कोई टेस्ट करो और क्या बीमारी है। हम बाबा के बने हैं, 5 साल 10 साल 15 साल से आ रहे हैं, लेकिन अंदर में जो दुख की फीलिंग का बुखार है वो तो गया ही नहीं। तो बताइए मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूं? हूं। तो आप कहेंगे बहन जी अब करें क्या, ये बातें तो सही हैं। यूं तो बाबा ने हमें बहुत खजाने दिए हैं, मैं आपसे पूछूंगी तो शायद आप मेरे से भी ज्यादा अनुभव सुनाएंगे, सब गिनती कर देंगे, ज्ञान योग धारणा शक्तियां समय स्वास, ये सब खजाने मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ा खजाना कौन सा है बोलिए बताइए, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जो हमें मिला है, कोई भी बताए बताइए है, बाबा की याद। और बताइए सबसे बड़ा खजाना, यस बोलिए, ज्ञान का खजाना, बहुत अच्छी बात है। और है देखिए, ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, देने वाला कौन है, देने वाला कौन है, उसको हम भूल गए अभी अभी बातें कर रहे हैं। सबसे बड़ा खजाना है बाप, सबसे बड़ा खजाना है बाप दादा, सबसे बड़ा खजाना है शिव बाबा ब्रह्मा बाबा। बाबा की एक अव्यक्त मुरली है जिसमें बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना बाप है। ज्ञान किसका है, याद किसको करना है, गुण और शक्तियों का दाता कौन है, संकल्प समय श्वास सब खर्च कहां करना है। माताएं बहनें कई कहेंगी हम तो इतनी बातें याद नहीं रख सकते, ये तो याद रख सकते हैं ना, मेरा सबसे बड़ा खजाना बाप है। जब से बाबा मुझे मिला है, अब जिसको जो चीज मिलती है वो उसी का वर्णन करता है। किसी को कोई गिफ्ट मिल जाए, किसी का धंधा अच्छा चल जाए, बस वो उसी का वर्णन करता है। वाणी से मनुष्य पहचाना जाता है, ये किस फील्ड से है। अब हम अगर पद्मा पदम भाग्यशाली बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा बताइए, ये विषय बहुत गहरा है, समय की सीमा है, मैं आपको केवल दो बातें याद दिलाना चाहती हूं। आप सबको मालूम है मैं कुछ नया नहीं बता रही हूं, बाबा की बताई हुई अनेक बातों में से दो बातें हम सबको गांठ बांधनी है। बाबा ने कहा है बच्चे अगर पद्मा पदम भाग्यशाली बनना चाहते हैं तो अपने संकल्प और अपने बोल पर ध्यान दो। अव्यक्त मुरली में है, मेरी वाणी कैसी है। आप देखेंगे कई मिलेंगे वो फट से तेरी मेरी इधर की उधर की, उसका ये हुआ ये हुआ, हमारे घर में ये हुआ, मेरे बेटे का ये हुआ। अरे हम कहां आए हैं, हम कहां आए हैं? हम दाता के घर में आए हैं, वरदाता के घर में आए हैं, भाग्य विधाता के घर में आए हैं। हम बातें किसकी कर रहे हैं, हम बातें किसकी कर रहे हैं? फट से अपने को चेक करो। अभी हम जो यहां 5 दिन रहेंगे ना, पक्का कर लो, मुझे बाबा फीलिंग में रहना है, आधार है मेरी फीलिंग। जैसे आपने अभी अभी चाय पी है, और अगर आपको कोई मीठा खाने को दे, आप खाएंगे? कहेंगे नहीं, अभी चाय पी है, चलो दे दीजिए, रख लेंगे, थोड़ी देर बाद खाएंगे। ये टेस्ट। और हम यहां से योग से उठ के जाएंगे, मुरली सुन के जाएंगे, और तुरंत बाहर जाके, अच्छा आपका धंधा कैसा चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, उसका क्या हुआ, थोड़ी देर भी हम अपनी इस बाबा फीलिंग में नहीं रहते हैं। पर अब तो मुझे 5 दिन बाबा फीलिंग में ही रहना है, बाबा मेरे साथ है, मैं किसका बच्चा हूं। नशे से कहिए, नशे से याद करिए, मैं उस सर्वशक्तिवान बाबा का बच्चा, मैं उस दाता वरदाता के घर में आया हूं, भाग्य विधाता के घर में आया हूं। एक अव्यक्त मुरली है बाबा की। बाबा ने कहा बच्चे भाग्य की रेखा खींचने की कलम बाबा ने अपने बच्चों के हाथ में दी है। अब अगर आपके हाथ में भाग्य की रेखा खींचने की कलम हो तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? देखते हैं ना, कहते हैं भाई देखो मेरे भाग्य की रेखा कैसी है। अब कलम ही हमारे हाथ में है तो शायद हम सबसे लंबी रेखा खींच लेंगे, और केवल अपनी नहीं खींचेंगे, अपने बाल बच्चे मित्र संबंधी, आओ आओ भाई कलम मिली है हमें भाग्य की रेखा खींचने की। ये 5 दिन में मुझे इतना पद्मा पदम भाग्यशाली बन के जाना है। एक भी बोल, आज सवेरे भी बाबा ने क्या कहा, बच्चों की चमक क्यों कम हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव और व्यर्थ दो में चले जाते हैं। और हम बड़ी आसानी से कहते हैं क्या करें, ये नेगेटिव आ ही जाता है, क्या करें, कुछ ना कुछ व्यर्थ तो अंदर चलता ही है। अच्छा आपकी दुकान तो कपड़े की है, क्या आप ग्राहक को दवाई दे सकते हैं? आप ज्वेलर हैं, क्या कपड़ा दे सकते हैं? मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? मैं विश्व रचयिता सर्वशक्तिवान की संतान, विश्व कल्याणकारी हूं, विश्व सेवाधारी हूं। अब मैं क्या दूंगी, मैं क्या दूंगी, सेवा करूंगी या व्यर्थ बोलूंगी, व्यर्थ सोचूंगी? हम अपने धंधे को कैसे भूल सकते हैं? और मेरा लक्ष्य, भविष्य में तो देवता बनेंगे, लेकिन वर्तमान में आज भी बाबा ने याद दिलाया बच्चे फरिश्ता बनना है। मैं फरिश्ता बनने वाली आत्मा हूं। बस दो ही बातें याद करनी है, फरिश्ता बनने वाला हूं, विश्व सेवाधारी हूं, विश्व कल्याणकारी हूं। तो करेंगे ये अभ्यास, आप जहां बैठे हैं थोड़ा सीधा होके बैठिए, एकदम सीधा, ताकि हम अपनी स्मृति को इतना पक्का कर लें कॉपी पेन छोड़ दीजिए, दो मिनट के लिए, दो मिनट के लिए, लेकिन ऐसी गहरी अनुभूति में हमें जाना है सचमुच ये जो अनुभूति हो रही है यही मेरा जीवन है, यही मैं हूं। तो सबसे पहले ये अपने अंदर में पक्का करें, मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा मस्तक के बीचों बीच विराजमान हूं। पूरा ध्यान अपना मस्तक में ले आए। अन्य कोई संकल्प नहीं, चमकता हुआ दिव्य सितारा सर्वशक्तिवान शिव बाबा के सामने। शिव बाबा गुण और शक्तियां देकर मुझ आत्मा को बहुत सुंदर फरिश्ता बना रहे हैं। एकदम पवित्र, हल्का उड़ने वाला मैं फरिश्ता। इस तरह से जो बाबा चाहते हैं, अनेक बार दिन में आज भी बाबा ने कहा अभ्यास करो, रटना नहीं है, कहना नहीं है मैं फरिश्ता हूं फरिश्ता हूं, फरिश्ता स्वरूप बन जाना है। कोई इधर उधर की बात आ रही है, मैं फरिश्ता, बात को घूमने दीजिए। हम यहां बैठे हैं, कई आ रहे हैं कई जा रहे हैं, मक्खी मच्छर उड़ रहा है, हम अपने ध्यान में हैं, अपने में मस्त हैं। अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार के संकल्प, नेगेटिविटी, ये सब मक्खी मच्छर खटमल, इनसे मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं फरिश्ता हूं। तो मेरा बोल भी कैसा होगा? बातें तो आएंगी, परिवार में रहते हैं, धंधा करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, मान लीजिए कोई कह भी देता ये नुकसान हो गया, को अच्छा कोई बात नहीं, हो गया हो गया, कर क्या सकते हैं हम, उसको डांट देते हैं, दो चार गाली निकालते हैं, चमाट लगा देते हैं, चीज तो वापस नहीं आएगी। लेकिन अब दूसरे के दुख को तो छोड़िए, अपने को हम अधिक दुखी करके अपने आप को सजा देते हैं। अपने को पनिश नहीं करना है, हम बाबा के घर में आए हैं, मुझ आत्मा जैसा खुश नसीब कौन। बाबा के समय में जब हम लोग योग में बैठा करते थे तो अपने गीत नहीं होते थे, जो आजकल तो अपने इतने गीत ढेर कंपोज हो गए हैं, बात नहीं पूछिए, लेकिन उन दिनों एक फिल्मी गीत चलता था और वो यही था, तू बड़ा खुश नसीब है जिसके तू करीब है। तो मैं आत्मा कौन हूं? खुश नसीब आत्मा हूं। केवल बाबा को ऐसे याद नहीं करना है, वो मेरा सत्य पिता है, सत्य शिक्षक है, नहीं। नशा, मैं किसका बच्चा हूं। दादी जानकी हमारी जब भी जहां भी जाती हैं, पूछो मैं कौन, मैं किसकी, कहने का भाव यही है। क्या मुझे नशा चढ़ा, मैं किसकी, मैं शिव बाबा की बच्ची हूं। मैं कितनी सच्ची हूं, साफ हूं, ईमानदार हूं, देने वाली हूं, दाता की बच्ची हूं। निर्णय हमारा अपना है। पद्मा पद्म भाग्यशाली बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं? अगर मुझे पद्मा पद्म भाग्यशाली बनना है तो आज से मुझे ये नशा चढ़ा लेना है। मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं और मेरे बोल कौन से हों? आशीर्वाद, दुआओं वाले बोल। अपना साधारण में, ऐसे नहीं, ए तू सुन रहा है नहीं सुन रहा है, तुझे कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं। बाबा कहता बच्चे तुम्हारा एक एक बोल अमृत हो, महावाक्य हो। लास्ट में समय को देखते हुए बात तो, ये विषय तो बहुत गहरा है, अगर हम पद्मा पद्म भाग्यशाली बनते बनना चाहते हैं, हमें सबसे पहला परिवर्तन कहें, कंट्रोल कहें, कौन सा करना है? ये मुख। यही सब बीमारियों की, यही झगड़े की, यही अनेक बातों का कारण है। ज्यादा खा लेना बीमारी का घर, खाते भी यहीं से हैं। आज तो मेरी ओवर ईटिंग हो गई। कोई बीमार है तो डॉक्टर कहता है सबसे पहले वेट घटाओ तो कम खाओ। चलो ये बात हो गई। फिर अगर हम जहां रहते हैं वातावरण ठीक रखना है तो मीठा बोलो, प्यार से बोलो, रफ डफ ना बोलो। जैसे कोई बीमार होता है डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है मुंह खोलो, जीभ दिखाओ, खूब लंबी लंबी आ करके दिखाते हैं। मानसिक रूप से भी जब हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले कहां बिगड़ाव आता है? इसी वाणी में सबसे पहले यही बदलती है। इससे मालूम पड़ता है आज ये अपसेट है, आज ये डिस्टर्ब है। तो अगर हमारा बोल, कहते हैं ना बोलो, दोनों शब्दों को अलग करो, बो और लो, जो बोएंगे वो लेंगे, बोलो। तो बोलो माना बोलो नहीं। और इसीलिए मनुष्य का अंतिम संस्कार कौन सा है, समझ गए ना? अंतिम संस्कार जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो कौन सा संस्कार होता है? मुख अग्नि संस्कार। आग भी कहां देते हैं? अरे भाई इतना बड़ा शरीर था, आग तो कहीं से भी लगा सकते थे, पांव से भी, यहां से भी ना। कहते हैं मुख अग्नि संस्कार सबसे ज्यादा पाप और सबसे ज्यादा पुण्य करने का साधन ये मुख है। तेरी मेरी करना, इधर उधर की करना माना पाप। बाबा ने एक मुरली में कहा बच्चे अगर आप पुण्य कमाना चाहते हो तो दूसरों को क्या करो? शक्ति दो। हमारा बोल कैसा हो? शक्ति देने वाला, दुआओं वाला, आशीर्वाद वाला। और वो तब होगा जब हमारी भावना श्रेष्ठ है, शुभ है। आप सबको अनुभव होगा, हम जब कुकर में कोई चीज बनाते हैं, दाल सब्जी, उसकी सीटी बजती है, विसल बजती है, खुशबू कौन सी आती है? जो हमने चढ़ाया है। दाल की खुशबू आए और मैं कहूं नहीं नहीं मैंने तो चावल चढ़ाया है कुकर में, या सब्जी, कहेंगे खुशबू तो दाल की आ रही है। जैसी मेरी अंदर की भावना होती है वही ये बोल ये खुशबू, और आज की भाषा में कहें तो कंप्यूटर में हम जो फीड करते हैं वही प्रिंट आउट मिलता है ना, या कोई दूसरा मिलता है? भाई भाई लोग बहुत काम करते हैं कंप्यूटर पर, वही मिलता है ना। मेरी वाणी मेरे दिल का प्रिंट आउट है। कई बार हम क्या कह देते हैं, नहीं मेरे मन में तो ऐसी बात नहीं थी, मेरे मुंह से निकल गया। निकल कैसे गया? ये तो आपके अंदर का प्रिंट आउट आया जो आपने फीड किया हुआ है। मेरे यहां फीड है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, वो सामने आता है, मेरा व्यवहार उसी तरह से है, मैं उसको उतना रिस्पेक्ट नहीं दे पाती। कहते हैं नहीं नहीं मैं उस दिन बिजी बहुत थी, मैं आपको समय नहीं दे पाई। प्रिंट आउट आ रहा है। तो मैं शुभ भावनाओं की खान हूं। केवल शुभ भावना का प्रयोग नहीं करना कि मैंने एक घंटा शुभ भावना का दान दिया, बाकी 23 घंटे क्या किया, लेकिन मैं आत्मा शुभ भावना की खान हूं। और यही बेहद है। कई बार हम बेहद शब्द सुन के मूंझ जाते हैं। बाबा कहता है बेहद में रहो, बेहद में रहो। बेहद क्या है? मैं भाई हूं, मैं बहन हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये हद है। बेहद क्या है? मुझे अब ये नशा हो, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मैं विश्व सेवाधारी हूं, मैं बाबा का फरिश्ता बच्चा हूं। तो जब हम मधुबन में भी आते हैं तो बहुत बार अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने नाती पोती के लिए कुछ ना कुछ छोटी सी चीज यहां से खरीद के ले जाते हैं, चाहे लिटरेचर से चाहे बाहर से। इस बार कोई चीज खरीदें या ना खरीदें, लेकिन हमारे परिवार वाले ये महसूस करें ये बदल कर आए हैं, ये पद्मा पद्म भाग्यशाली बनकर आए हैं। और वह महसूस तब करेंगे जब हमारी वाणी का परिवर्तन होगा। वाणी परिवर्तन सहज है या मुश्किल है? सहज है। जो कहते हैं सहज है वो हाथ उठाओ। वाणी परिवर्तन अच्छा, और जो कहते हैं मुश्किल है वो हाथ उठाओ। तो भले आप सब ने वाणी परिवर्तन में सहज है हाथ उठाया है, इसलिए आप सबको बधाई हो। लेकिन वाणी परिवर्तन में मैं कठिन तो नहीं कहूंगी, लेकिन अटेंशन की आवश्यकता है। हम उठते ही फट से यहां से उठेंगे ना, मान लो बहुत देर मैं बैठी थी ना तो मेरी कमर में दर्द हो गया। अरे मैं बैठी थी, मैं फरिश्ता बन के बैठी थी, मुझे तो आज इतना अच्छा अनुभव। ये अनुभव सुनाना है, ये शेयर करना है, ये है मेरा प्रिंट आउट। मैं तो बैठी थी, मुझे ना बहुत थकान थी ना, सुस्ती आ रही थी, नींद आ रही थी। ये कौन सी शेयरिंग है? ये कौन सा प्रिंट आउट है? ये प्रिंट आउट आना चाहिए। मैं थकी हुई तो थी, लेकिन मैंने जैसे ही अपने को फरिश्ता समझा, मैंने जैसे ही बाबा का आह्वान किया, तो क्या हुआ, मेरी थकान मिट गई। तो ये है परिवर्तन की विधि। हर बात को मुझे परिवर्तन करना है। तो बोल का परिवर्तन सहज है, और बाबा ने कहा बोल से आप बहुत पुण्य जमा कर सकते हैं। तो ये तो सहज विधि है। शुभ भावना देने में फिर भी थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। बोलते तो हम 24 घंटा हैं। जो बोलना है बस पहले बाबा वाह, मान लो मुझे ठोकर भी लग गई, मैं गिर भी गई, वाह बाबा ड्रामा, खड़े हो जाओ। देखो कोई छोटा बच्चा होता है, यंग होता है, उसको क्या वो फटाफट उठता है, उसको शर्म आती है, कोई देख ना ले कि मैं गिर गया। और बेचारा बुढ़ा होगा तो वो मदद ढूंढता है। तो हम बाबा के बच्चे, बाबा ड्रामा, तीन बिंदी लगाने के लिए कहा है। तो पद्मा पद्म भाग्यशाली बनने की पहली विधि मेरा बोल, बस बाबा बाबा और बाबा और कुछ नहीं। और संकल्प, ज्यादा संकल्प मत चलाइए, क्या करें कैसे करें, मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं। खाना बनाना है तो भी मुझ फरिश्ते की सेवा है भोजन बनाना। आज फरिश्ते को जाना है दुकान पर, मुझे शुरू ही यहां से करना है बस। अब साधारण बोल बोलना ही नहीं है तो ये तो आसान है, ये तो आसान है। तो हम व्यर्थ से, नेगेटिव से मुक्त हो जाएंगे। माताएं हो जाएंगे ना मुक्त। ऐसे नहीं घर में बच्चा लेट आया तो एकदम अरे तुम लेट क्यों आए, ऐसा क्यों किया, डांटना शुरू कर। को लेट आए कोई बात नहीं, अच्छा है आ तो गया ना, तो आप भी खुश बच्चा भी खुश। नहीं तो बच्चा क्या कहता, मां को तो आदत है हमेशा ऐसा बोलने की, चलो कोई बात नहीं, वो भी सुन के इधर से उधर कर देता है। वेलकम करना हम सीखें। लेट आया आ तो गया, तो मेरा क्या बन गया, पुण्य बन गया। उस आत्मा को परिवर्तन का संकल्प जरूर आएगा, आप 100 बार उसको कहना, माना 100 दिन, 100 दिन माना 3 महीने से भी ज्यादा। अगर वो लेट आता रहेगा तो भी आप कहना अच्छा तू आ तो गया ना, बहुत अच्छा है, तू आ तो गया ना, खाना खा ले। देखो वो बदलता है या नहीं बदलता, ये जादू की एक हमने आपको टिप दी है, आप करके देखना। तो आज से हम पक्का करें, क्या करेंगे, क्या करेंगे, केवल मीठा नहीं ज्ञान युक्त ज्ञानवान बोल बोलेंगे, खुश रहेंगे और सबसे खुशी बांटेंगे। एक सेकंड के लिए भी अपने अंदर उदासी नहीं आने देना। उदासी माना मेरे भाग्य में कहीं कुछ कमी हो रही है। तो आप बाबा के बच्चे, पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे, दाता वरदाता भाग्य विधाता के घर में आए हुए बाबा के भाग्यवान बच्चों को पुनः यही शुभ भावनाएं। आगे नवरात्रे हैं, दीपावली है, आप सब पद्मा पदम भाग्यवान बने। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति।